सुबह के 5 बजने से पहले ही अलार्म की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। विशाल की आंख सबसे पहले खुली। उसने एक नज़र घड़ी पर गाली और बिना समय गंवाए बिस्तर से उठ गया। उसके लिए समय की पाबंदी आदत थी। दूसरी तरफ अंकिता अब भी गहरी नींद में थी। रात भर की थकान और नए सफ़र की उत्सुकता के कारण उसे देर से नींद आई थी। विशाल ने धीरे से कहा, अंकिता उठ जाओ, हमें निकलना है। अंकिता ने उनींदी आंखें खोली। इतनी जल्दी? फ्लाइट छूट गई तो अगली का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो तुरंत उठ बैठी। जी, अभी तैयार होती हूँ। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आए। ड्राइवर पहले से कार लेकर बाहर खड़ा था। किक्की में सामान रखा गया। विशाल ने एक बार टिकट, पहचान पत्र और बाकी ज़रूरी कागज़ देखे। सब ठीक था। चलते हैं। कार जयपुर की शांत सड़कों पर आगे बढ़ने लगी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान हल्का गुलाबी दिखाई दे रहा था। अंकिता पहली बार इतनी सुबह शहर को देख रही थी। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कभी चौड़ी सड़कें देखती, कभी बड़े बड़े होटल, तो कभी मॉर्निंग वॉक करते लोग। ये लोग इतनी सुबह घूमने निकल जाते हैं? उसने सहजता से पूछा। विशाल ने मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, हाँ। कुछ मिनट बाद, वो देखिए कितना बड़ा पार्क है। फिर इतनी चौड़ी सड़क मैंने पहली बार देखी। विशाल ने बस हल्की सी मुस्कान दबाई। उसकी बातें बचकानी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थीं जो हर नई चीज़ को सचमुच पहली बार देख रहा हो। थोड़ी देर बाद कार एक सिग्नल पर रुकी। सड़क किनारे एक छोटी सी बच्ची फूल बेच रही थी। अंकिता ने शीशे से बाहर झांका। बेचारी इतनी सुबह काम कर रही है। विशाल ने उसकी ओर देखा। अंकिता की आंखों में उस बच्ची के लिए सच्ची चिंता थी। कुछ सोचकर उसने ड्राइवर से कहा, भैया जरा गाड़ी रोकिए। वो उतरी और बच्चे से सारे फूल खरीद लिए। बच्ची खुशी से मुस्कुराने लगी। दीदी, भगवान आपको खुश रखे। अंकिता ने फूलों का छोटा सा गुच्छा वापस उसी बच्ची के हाथ में रख दिया। ये तुम ही रखो, बेचने से ज्यादा तुम्हें अच्छे लगेंगे। बच्ची की आंखें चमक उठीं। विशाल ये सब चुपचाप देख रहा था। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा सवाल उठा। आज के समय में कोई ऐसा भी सोचता है? गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। अंकिता अपनी सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बात ही ना की हो। करीब 40 मिनट बाद वे एयरपोर्ट पहुंच गए। अंकिता ने जैसे ही विशाल इमारत देखी, उसकी आंखें फैल गईं। ये कितना बड़ा है? विशाल ने सामान की ट्रॉली निकालते हुए कहा। पहली बार एयरपोर्ट आई हो? अंकिता ने संकोच से सिर हिला दिया, हाँ। उसके चेहरे पर झिझक थी कि कहीं विशाल उसे कम ना समझ ले। लेकिन विशाल ने इस बार कोई टिप्पणी नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ रहना, भीड़ रहती है। अंकिता ने तुरंत जी कहा और उसके साथ चलने लगी। अंदर प्रवेश करते समय सुरक्षा जांच हुई। अंकिता हर कदम पर विशाल की तरफ देखती कि अब क्या करना है, कहाँ टिकट दिखानी है, कहाँ बैग रखना है, कहाँ लाइन में खड़ा होना है। विशाल हर बार छोटे छोटे इशारों से उसे समझा देता। उसके व्यवहार में कोई विशेष अपनापन नहीं था, लेकिन वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ रहा था। सुरक्षा जांच के बाद वे प्रतीक्षालय में बैठे। अंकिता ने सामने खड़े बड़े बड़े जहाज देखे। ये सच में इतने बड़े होते हैं? उसकी आवाज में आश्चर्य साफ था। विशाल ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा, पहली उड़ान में सबको लगता है। अंकिता मुस्कुरा दी। अगर बहुत डर लगा तो बता दूंगी। विशाल ने बस सिर हिला दिया। कुछ देर बाद बोर्डिंग की घोषणा हुई। दोनों विमान में अपनी सीट पर बैठ गए। संयोग से अंकिता को खिड़की वाली सीट मिली। जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ने लगा, उसने सीट के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। इतनी तेज? वो धीरे से बुदबुदाई। विमान ने उड़ान भरी तो नीचे पूरा जयपुर छोटा होता चला गया। अंकिता की सांस जैसे रुक गई। हम सच में उड़ रहे हैं? उसकी आंखों में बच्चे जैसी चमक थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से बाहर इशारा किया। देखिए बादल। विशाल ने खिड़की से बाहर देखा। वो दृश्य उसने कई बार देखा था, लेकिन अंकिता जिस तरह उन्हें देखकर खुश हो रही थी, उससे वही नज़ारा जैसे नया लगने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे रुई बिछी हो, वो धीमे से बोली। विशाल अनायास मुस्कुरा दिया। उसे खुद एहसास नहीं हुआ कि उसके चेहरे की सख्ती कुछ देर के लिए गायब हो गई है। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस ने नाश्ता परोसा। अंकिता ने पैकेट को उलट पलट कर देखा। ये कैसे खोलते हैं? उसने धीरे से पूछा। विशाल ने बिना कुछ कहे पैकेट खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऐसे? धन्यवाद। वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में बनावट नहीं थी। विशाल फिर चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर फिर वही पुरानी बात उठी। मैंने सोचा था मेरी पत्नी पढ़ी लिखी, आधुनिक और मेरे साथ हर बात में बराबरी से चलेगी, लेकिन शादी के बाद सच्चाई कुछ और निकली। ये सोच अभी भी उसके मन में थी। फिर उसी पल उसने अंकिता को देखा। वो बड़ी सावधानी से जूस का डिब्बा पकड़कर पी रही थी, ताकि एक बूंद भी कपड़ों पर ना गिरे। उसकी सादगी दिखावे वाली नहीं थी। अगर ये अनपढ़ है तो इसमें घमंड भी तो नहीं है, हर नई चीज़ सीखना चाहती है। ये विचार आते ही विशाल ने खुद को झटक दिया। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? उसने नज़रें दूसरी तरफ कर ली। कुछ घंटों बाद विमान उतर गया। बाहर की हवा जयपुर से बिल्कुल अलग थी। हल्की ठंड ने उनका स्वागत किया। अंकिता ने तुरंत अपना शॉल निकाल लिया। सच में यहाँ कितनी ठंड है? विशाल ने उसके हाथ से भारी बैग बिना कुछ कहे ले लिया। मैं उठा लूंगी, रहने दो, बस इतना ही कहा। अंकिता ने मन ही मन मुस्कुराकर जी कहा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पहाड़ों की दिशा में जाने वाली टैक्सी उनका इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने सामान रखा और बोला, मनाली तक थोड़ा समय लगेगा साहब, लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत है। गाड़ी पहाड़ों की ओर बढ़ चली। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, दूर दिखाई देते पहाड़, घुमावदार सड़कें, बहते हुए झरने। अंकिता की आंखें एक पल के लिए भी खिड़की से नहीं हट रही थी। इतना सुंदर भी हो सकता है, वो अनायास बोल उठी। विशाल ने उसकी तरफ देखा। वो हर दृश्य को ऐसे देख रही थी जैसे जिंदगी उसे पहली बार कोई नई किताब पढ़ा रही हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में पहली बार ये सवाल गूंजा, क्या मैंने सिर्फ उसकी पढ़ाई को देखकर उसके पूरे व्यक्तित्व का फैसला कर लिया? जवाब अभी भी उसके पास नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि मनाली की ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक पहुँचने की नहीं, बल्कि शायद दो अजनबियों के बीच धीरे धीरे भरोसा बनने की शुरुआत भी बनने वाली थी।